समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का ये उपदेश हमारे सारे कष्टों सारी जटिलताओं से हमें मुक्ति दिलाता है। श्री कृष्ण का नाम ही हमारे सारे कष्टों को हर लेता है। आज इन्हीं श्री कृष्ण का जन्मदिन है। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम परिक्रमा। मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं तन्वी खुराना और हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सारी जानकारी जिनसे आपका है सरोकार। श्रोताओं, कार्यक्रम में मुख्य समाचारों के अलावा हम चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। और आज जन्माष्टमी है तो हम मथुरा के भी चक्कर लगाएंगे।
Absolutely. A very happy Krishna Janmashtami to all our listeners. Like Akarshita said, Mathura jana to banta hai. So Mathura or Vrindavan, I am sure all the devotees are trying to go there because there's a huge crowd over there and everyone wants to witness the land where Shri Krishna took birth. Today is Shri Krishna's 5,252nd birth anniversary and it is considered as auspicious day, such an auspicious day. So celebrate this day with pure heart and a big smile. Let's begin this program. A very good afternoon to all our listeners and you tuned in to Parikrama on 100.1 FM. And listeners, like Akarshita said, she has already introduced you to our program Parikrama and we have got a lot in store for you. So let's begin with the news headlines first.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
इन जम्मू एंड कश्मीर रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इन फुल स्विंग इन क्लाउडबर्स्ट हिट चिसोती विलेज इन किश्तवाड़।
राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर स्मरण कर रहा है।
फेस्टिवल ऑफ जन्माष्टमी मार्किंग बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्ण बींग सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री विद रिलीजियस फर्वर।
पाकिस्तान में तेज बारिश के कारण आई बाढ़ में 320 से अधिक लोगों की जानें गई हैं।
एंड इन शूटिंग एशियन चैंपियनशिप 2025 टू किक ऑफ एट शिमकंत इन कजाकिस्तान टुडे। And now, time for our segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today, we will talk about demography mission and festival of Janmashtami. Prime Minister Narendra Modi has warned against illegal immigration, which is threatening the demography of the country. In his Independence Day address, Mr. Modi announced a high-powered demography mission to protect the country from the dangers posed by illegal immigrants. Prime Minister said he would like to alert the nation about the concern, which has now become a challenge. He said, under a well-thought-out conspiracy, the country's demography is being changed and seeds of a new crisis are being sown. Prime Minister said that the infiltrators are snatching the livelihood of the youth of the country.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे हमारी बहनों और बेटियों को निशाना बना रहे हैं। वे आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं और उनकी जमीनें हड़प रहे हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के कारण उत्पन्न चुनौतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसांख्यिकीय परिवर्तन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं।
जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा सामाजिक तनाव के बीज बो देता है और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं। हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित निश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा।
अच्युत केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम।
The festival of Janmashtami, marking the birth of Lord Krishna, is being celebrated across the country today. Devotees are thronging temples to offer prayers. Thousands of temples across the country have been decorated with flowers and jhakis are on display, as is the tradition. In Uttar Pradesh, the Krishna Janmabhoomi temple in Mathura is beautifully decorated to celebrate Janmashtami. A large number of people have reached Mathura and Vrindavan to celebrate the festival. We have a report.
On the occasion of Sri Krishna Janmashtami, the city of Sri Krishna, Mathura, is witnessing the colors of devotion, faith and joy. All important temples in Mathura have been decorated with colorful lights and flowers. This year Janmashtami has become even more special because Lord Krishna will give divine darshan from Sindoor Phool Bangla to honor the bravery of the armed forces for the success of Operation Sindoor. A member of Krishna Janmasthan Seva Sansthan, Gopeshan Nath Chaturvedi, informed that the Abhishek of Lord Krishna will be performed in the midnight. LED screens have been installed to make darshan accessible for large number of devotees. High security arrangements have been made for the safety of devotees. Om Avasthi, Akashwani News, Lucknow.
कर्मणेव वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनः, अर्थात आप अपना कर्म करते रहिए, फल आपको अपने आप ही मिल जाएगा। गुजरात में भी भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी का पर्व आज परम पूजनीय द्वारकाधीश मंदिर, डाकोर और श्यामलाजी मंदिरों सहित सभी श्री कृष्ण मंदिरों में धार्मिक उत्साह और गहरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
A large number of devotees from across the country and abroad have gathered in holy city Dwarka for the Janmashtami celebrations. Long queues of devotees are being seen at the most revered Dwarkadhish temple. The temple is alive with bhajans, aartis, garbas and Krishna Lila kirtans. Festivities began at the temple with the Mangala Aarti in the morning and will culminate in a grand midnight aarti welcoming the birth of Lord Krishna. The temple is beautifully decorated and Lord Krishna's idol is adorned with divine attire. Similar celebrations are taking place in Dakor and Shamaji temples, with temple authorities ensuring smooth arrangements for the large influx of pilgrims. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
In the national capital region, temples and squares in Delhi, Noida and Ghaziabad have been decorated for the grand celebration. Crowds of devotees are seen in temples. Large number of devotees have arrived for the celebrations at the ISKCON temples. Delhi Chief Minister Rekha Gupta also offered prayers at the ISKCON temple in east of Kailash on the occasion.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने समस्त मानवता को सभी प्राणियों के कल्याण हेतु समर्पित रहते हुए धर्मानुसार कर्तव्य पालन का मार्ग दिखाया है। उन्होंने नागरिकों से भगवान कृष्ण के दिखाए मार्ग पर चलकर समाज और राष्ट्र को मजबूत करने का आह्वान किया।
Prime Minister Mr. Modi hoped that Janmashtami, the sacred festival of faith, joy and enthusiasm, will infuse new energy and zeal into people's lives.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
On 79th Independence Day of the country yesterday, the iconic movie Indian cinema Sholay completed 50 years. Maharashtra Postal Circle released two specially designed picture postcards and a presentation pack on this occasion. More on this from our Mumbai correspondent.
To celebrate the golden jubilee of G.P. Sippy's legendary film Sholay, the Maharashtra Postal Circle yesterday released two specially designed picture postcards and a presentation pack featuring an exclusive golden cancellation. The event marked 50 years since the film's original release on 15th of August 1975. Chief Postmaster General Maharashtra Circle Amitabh Singh officially unveiled the commemorative items and presented the first album to the acclaimed director of film Sholay, Ramesh Sippy. Speaking to Akashwani News, Mr. Amitabh Singh said,
मुंबई जीपीओ में उस फिल्म के डायरेक्टर श्री रमेश सिप्पी ने एक स्पेशल सेट ऑफ पोस्टकार्ड्स रिलीज किए जो शोले पे निर्मित हैं, और साथ ही सोने की एक मोहर भी जारी की गई जो अंतरदेशीय और पोस्टकार्ड पत्रों पे लगाई जाएगी, और सारे विभाग के लोग भी इसमें शामिल हुए और इस पिक्चर को सम्मान दिया गया भारतीय डाक विभाग की ओर से।
The occasion was graced by noted personalities related to the film, a large gathering of philatelists and film enthusiasts reflecting the film's enduring popularity. Half a century after its release, Sholay continues to hold a special place in the cultural and cinematic heritage of India. For Parikrama, this is Prarthana from Mumbai.
आज के समय जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है तन्वी, अगर हम देखें तो महानगरों में जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, तो वहीं कुछ लोग इससे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे पास एक ऐसी ही स्टोरी है केरल के कोझिकोड में। वहां पे एक घर है जो देखने में साधारण लगता है लेकिन कुछ असाधारण कर रहा है। ये घर कार्बन मुक्त हो गया है। पेश है ये खास रिपोर्ट।
इन केरलास कोझिकोड वेंगेरी देयर स्टैंड्स ए हाउस नेम्ड मेडा. At first glance, it looks like any other neat, well-kept home. But behind those walls is a silent revolution. This house has become carbon neutral. This is not a concept from Europe or some faraway city. It is happening right here in Kozhikode. And this is not just a claim. The Center for Water Resources Development and Management, CWRDM, has officially authenticated it. The home produces very little carbon dioxide. And whatever tiny bit it does produce is offset or neutralized through energy saving, renewable energy use and eco-friendly practices. Back into this Vengeri home and one can see solar panels on the roof currently producing clean electricity. Inside, LED lights and energy efficient appliances keep power consumption low. The house is designed for good ventilation, so fans and air conditioning are rarely needed. Rainwater harvesting tanks store monsoon water and organic waste from the kitchen is composted in the backyard. Not a drop or scrap goes to waste. In a world struggling with the climatic change, such examples are priceless. If one family can achieve carbon neutrality, why not a street? Why not a city? Kozhikode has already set its sights on becoming carbon neutral in the coming years. And here in Vengeri, we have a living, breathing example of how it can be done. This house reminds us that the fight against climatic change doesn't begin in government offices or international summits. It begins at home, with the choices we make, the habits we form, and the values we pass on. Anil Chandran for Parikrama from Kozhikode.
The coalition government in Andhra Pradesh is perfecting the implementation program of Super 6 schemes. Starting from yesterday, the 79th Independence Day, the government of Andhra Pradesh, led by Chief Minister N. Chandrababu Naidu, has launched the implementation of free travel facility to women in RTC buses, freeing women from the burden of travel expenses. A report on this.
The free travel facility to women in RTC buses under Stri Shakti scheme was launched yesterday on August 15 in Andhra Pradesh is an important scheme of the Super 6 schemes issued during the general elections in 2024. The Transport Department and Road Transport Corporation have geared up for the implementation of the scheme with necessary software prepared to issue zero fare tickets to women travelling in buses. The government has provided women with the facility of free travel in Palle Velugu, Ultra Palle Velugu, City Ordinary Express and Metro Express buses. About 2.62 crore women in the state can use the free bus travel. The government has decided to extend this free travel to transgenders as well. The Stri Shakti scheme will save women on travel expenses. According to the government's estimate, on an average, women travel in various buses 4 times a week, while working women travel daily. This costs approximately ₹1,000 to ₹3,000 per month per woman, although there were proposals to implement the free bus travel scheme only in city, the government has decided to implement it in express and metro express buses as well, with the aim of reducing the travel expenses of every poor, middle class and common women travelling in buses, providing an opportunity for long distance travel. The state government will bear a burden of approximately approximately rupees 1942 crore for implementing this scheme. Although it is difficult to bear this amount in the current economic situation, the Andhra Pradesh government has given the nod for implementation of the scheme, saying that it will provide some financial relief to women. Through this, a key promise among the Super Six promises given during the elections has been fulfilled. To utilize free bus travel, passengers should be residents of the state. They can travel free by showing voter ID, Aadhaar, ration card, driving license and other such documents to the conductors. Free travel is not applicable in non-stop super luxury AC buses and services plying on ghat roads. For Parikrama, Henry, Akashwani, Vijayawada.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 आज कजाकिस्तान के शिमकेंट में शुरू होगी। दो बार की ओलंपिक्स पदक विजेता मनु भाकर एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत का नेतृत्व करेंगी। 28 देशों के 734 निशानेबाज प्रतिस्पर्धा करेंगे। एशियाई प्रतियोगिता के लिए भारतीय सीनियर निशानेबाजी दल में 35 सदस्य हैं जो 15 स्पर्धाओं में पदक के लिए मुकाबला करेंगे। भारतीय निशानेबाज जूनियर स्पर्धाओं में भी प्रतिस्पर्धा करेंगे। मनु भाकर महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल और 25 मीटर पिस्टल दोनों स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगी। और अधिक समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति संपदा में प्लूमेरिया गार्डन, बनियान ग्रोव और बबलिंग ब्रुक का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्लूमेरिया गार्डन, बनियान ग्रोव और बबलिंग ब्रुक अब उद्यान का हिस्सा है। प्लूमेरिया गार्डन में घास के टीले और विशेष रूप से तैयार किए गए वृक्षारोपण शामिल हैं। अमृत उद्यान अगले महीने की 14 तारीख तक जनता के लिए खुला रहेगा।
And now some news from defense sector. Indian naval ships INS Rana, a guided missile destroyer, and INS Jyoti fleet tanker are now participating in the 12th edition of Sri Lanka India Naval Exercise Slynex 25 being conducted in Colombo from 14th to 18th of this month. Conceptualized in 2005, Slynex is a bilateral naval exercise that has strengthened maritime cooperation between the two nations over two decades. Slynex aims at enhancing interoperability, maritime cooperation and exchanging best practices while jointly undertaking multifaceted maritime operations. The previous edition of Slynex was conducted at Vishakhapatnam, India from 17th to 20th of December 2024.
SLNS गजबाहु और विजयबाहु श्रीलंकाई नौसेना का प्रतिनिधित्व करेंगे और दोनों नौसेनाओं के विशेष बल भी इस अभ्यास में शामिल होंगे। बंदरगाह चरण के दौरान पेशेवर बातचीत, विषय वस्तु विशेषज्ञ आदान प्रदान, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान, सांस्कृतिक और सामाजिक आदान प्रदान के साथ साथ योग सत्र और खेल आयोजनों की योजना बनाई गई है। समुद्री चरण के दौरान नियोजित नौसैनिक अभ्यासों में तोपखाने की फायरिंग श्रृंखला, संचार प्रोटोकॉल, नेविगेशन, नाविक कौशल विकास, विजिट बोर्ड खोज और जब्ती और समुद्र में ईंधन भरना शामिल है।
The Slynex maritime exercise exemplifies the deep engagement between India and Sri Lanka, which has strengthened cooperation in the maritime domain in consonance with India's policy of mutual and holistic advancement for security and growth across regions, that is, Mahasagar.
अब आइए बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। इसी क्रम में हम सबसे पहले चलेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों को याद करेंगे।
On 16th August, year 1909, was born Gothu Lachana in Srikakulam, Andhra Pradesh. He was a champion of kisans, backward classes, weaker sections and one of the most prominent leaders of his time. He was arrested at a very young age of 21 when he participated in the salt satyagraha at Palasa. Lachana also participated in the Quit India movement. He was conferred the title of Sardar for his fearless fight against the British Raj.
Having been inspired by Gandhi's fast unto death on the issue of untouchability, Lachanna organized Harijan Seva Sangam at Barua in 1932. He started a night school in the Harijan Cheri and agitated against untouchability. He organized estate-wise Zamindari Raitu associations, no-tax campaigns, fought for the abolition of Zamindari system as farmers were unable to pay the heavy land revenue that was levied upon them. In 1940, he organized All India Kisan Sabha at Palasa.
Another interesting fact about this day is that Puducherry celebrates its independence on the 16th of August. Puducherry, then Pondicherry, was a French colony and their parliament ratified the Treaty of Secession on August 16, 1962, formally merging Puducherry with the Union of India.
Mark Twain has aptly summed up India as the cradle of the human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great-grandmother of tradition. Our most valuable and most artistic materials in the history of man are treasured up in India only.
टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की सातवीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। वर्ष 2018 में 16 अगस्त को उनका निधन हुआ था। श्री वाजपेयी तीन बार देश के प्रधानमंत्री बने। उनका पहला कार्यकाल वर्ष 1996 में केवल 13 दिन का था। दूसरी बार वे 1998 से लेकर 1999 तक 11 महीने के लिए और तीसरी बार 1999 से लेकर 2004 तक पूरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री रहे। वर्ष 2015 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया।
And we are also discussing about Elvis Presley. Today is his death anniversary. An American singer and actor, referred to as the king of rock and roll, he's widely regarded as one of the most significant cultural figures of 20th century. His first single, Heartbreak Hotel, was released in January 1956 and became a number one hit in the US. In November 1956, Elvis made his film debut with the film Love Me Tender, and some of the most famous films that included are Jailhouse Rock, Blue Hawaii, and Viva Las Vegas. He is one of the best-selling music artists in history, having sold an estimated 500 million records worldwide. And he was commercially successful in many genres, be it pop, country, rock and roll, rockabilly, rhythm and blues, and many more. So we have a song from him that is Jailhouse Rock.
चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता तो आप सभी ने बचपन में पढ़ी ही होगी, है ना तनवी?
बिल्कुल।
आज जयंती है हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुभद्रा जी राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवित्री रहीं। उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी में भी व्यक्त किया। 1913 में 9 वर्ष की आयु में सुभद्रा की पहली कविता प्रयाग से निकलने वाली पत्रिका मर्यादा में प्रकाशित हुई। ये कविता सुभद्रा कुंवरी के नाम से छपी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाते हुए उस आनंद और जोश में सुभद्रा जी ने जो कविताएं लिखी, वे उस आंदोलन में स्त्रियों में एक नई प्रेरणा भर देती हैं। उनकी मुख्य रचनाएं रहीं मुकुल, झांसी की रानी, बिखरे मोती आदि।
And we are also talking about Manorama. Today is her birth anniversary. An Indian actress known for her Bollywood movies and especially the role she has played in Sita or Geeta. And she was also there in Ek Phool Do Mali, Do Kaliyan and many more. She started her career as a child artist in 1936 under the name Baby Iris. And we just know that her facial expressions were so clear, and there hasn't been a single person who has achieved what she has achieved in her life. She played comic roles in super hit films such as Half Ticket, appearing alongside Kishore Kumar and of course the legendary Madhubala. She gave memorable performances in Das Lakh, Jhanak Jhanak Payal Baje, Mujhe Jeene Do, Mehboob Ki Mehndi, Karwa, Bombay to Goa and La Waris as well. Let's hear a dialogue from her movie Sita aur Geeta.
Mil gayi.
Badrinath ji, aap hi hain.
Are soch kya rahe ho? Tumhe kaho Badrinath, bolte kyun nahi?
Kya yahi aapki bhatiji Sita hai?
Are nahi bhai.
Are to kahan chali gayi thi Sita meri beti?
Mahabaleshwar gayi thi hathi mere saathi.
आप लोग इसका इलाज क्यों नहीं करवाते?
आप फिक्र मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, अब इसका ऐसा इलाज होगा कि इसका दिमाग बिल्कुल ठीक हो जाएगा. अरे तू कहाँ चली बेटी?
आज पंजाबी साहित्यकार गुरुदयाल सिंह की पुण्यतिथि है. अमृता प्रीतम के बाद गुरुदयाल सिंह दूसरे पंजाबी साहित्यकार थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. गुरदयाल सिंह आम आदमी की बात कहने वाले पंजाबी भाषा के विख्यात कथाकार रहे. उनकी मुख्य रचनाएं हैं मड़ी दा दीवा, परसा, रेत दी इक मुट्ठी, रूखे मिस्से बंदे आदि. उन्हें 1999 में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था.
And today is the birthday of James Cameron, a Canadian and New Zealand filmmaker. If any one of you has seen the movie Titanic or Avatar, then you know who he is. He first gained recognition for writing and directing the science fiction action film The Terminator in 1984. And then he had further success with Aliens, The Abyss, Terminator the Second, Judgment Day, True Lies, as well as Avatar and its sequels. He directed, wrote, co-produced and co-edited the historical romance epic Titanic, winning Academy Awards for Best Picture, Best Director and Best Film Editing. And in addition to filmmaking, he's also a National Geographic Explorer in Residence and has produced many documentaries on deep ocean exploration. So we have an interview where he's telling how he got the idea of Avatar. Let's hear that.
Well, I'd say the very first seed of Avatar was a dream I had when I was in college. I was 19, and I had a dream about an amazing forest that was bioluminescent. And I got up afterwards. I was so inspired by the dream, I started sketching it in oil pastel, colored pencils, and so on. And years later, I started to incorporate that concept into a story. It wasn't Avatar. It was another story. And then years after that, I was looking to tell a story that took place on another planet that I could develop at my newly founded visual effects facility. I incorporated that concept into a thing I called Avatar. You know, in terms of inspiration, there was that. There was every piece of nature photography I've ever seen, every moment that I've spent in a forest.
आज भारतीय भौतिक और मौसम वैज्ञानिक अन्ना की पुण्यतिथि है. वे भारत के मौसम विभाग की उपनिदेशक भी रहीं. अन्ना मणि वो महिला थी जिनके कारण देश में मौसम की भविष्यवाणी करना आसान हुआ. उन्होंने मौसम की भविष्यवाणी करने वाले ऐसे उपकरण तैयार किए जिनसे सटीक जानकारी मिलना आसान हुआ.
Today is the birthday of Madonna, an American singer, songwriter, record producer and actress. Referred to as the Queen of Pop, she has been recognized for her continual reinvention and versatility in music. I'm sure you have heard her songs, be it Like a Prayer, Vogue, Take a Bow, Frozen, Music, Hung Up and 4 Minutes and many, many more. Her other ventures include fashion brands, written works, health clubs and filmmaking. She is the best-selling female recording artist of all time and the first female performer to accumulate $1 billion from her concerts. We have one of her famous tracks titled Material Girl.
आज भारतीय अभिनेता सैफ अली खान का जन्मदिन है.
सैफ अली खान ने 1993 में फिल्म परंपरा से बॉलीवुड में डेब्यू किया। उन्होंने मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, हम साथ साथ हैं, दिल चाहता है, कल हो ना हो, हम तुम, परिणीता जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया। उन्होंने 2001 में दिल चाहता है और 2003 में कल हो ना हो जैसी फिल्मों में अपने अभिनय के लिए प्रशंसा प्राप्त की। उन्हें 2004 में हम तुम और 2005 में परिणीता और सलाम नमस्ते जैसी फिल्मों में भी सफलता मिली। 2010 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।
बेचैन कर गया हमें खया।
It's also the birthday of Hemlata, an Indian classically trained playback singer in Bollywood, and she is best known for her songs in the late 1970s, especially Akhiyon Ke Jharoke Se. So let's hear the song.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और तन्वी को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।